ओम शांति। एक बार सभी बोलेंगे ओम शांति। आज हम सबके बीच में बाबा के अनन्य रतन, बाप दादा की पालना लिए हुए और खास दादी जी के अंग संग रहे हुए बाबा के विशेष रतन आदरणीय सविता दीदी जी हम सबके बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का हम स्वागत करेंगे। बहुत ही निर्माणशील मिलनसार ऐसे दीदी जी, जैसे हमने पहले दिन भी सुना, सारा भट्टी का कोऑर्डिनेशन कर रहे दीदी जी। आप वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका है, डबल डॉक्टर है, जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बना अभी हमने सुबह भी सुना, 90 से आप मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे। जैसे दादी जी बीमार हुए, फिर दादी जी के अंग संग रह के उन्होंने, दादी जी के खास डॉक्टर थे, दादी जी की सेवा की, दादी जी के बहुत सारे अनुभव उनके पास से, बाबा के अनन्य रतन और महिला विंग जो है वुमेन्स विंग उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है दीदी जी। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज का जो हमारा टॉपिक है निरंतर योगी बनने के लिए मनसा सेवा, इस पर दीदी जी प्रकाश डालेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो दादी जी के साथ के कुछ अनुभव भी हम सबके साथ शेयर करें। जब भी हम मधुबन में आते हैं, बाबा मिलन हो, राजयोग शिविर हो या जब भी भट्टिया हो, दीदी जी का क्लास एक रहता ही है। तो आप सभी उनको सुनते भी होंगे, पीस ऑफ माइंड पर भी क्लास आते हैं। तो ऐसे दीदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को अपनी भुजाएं बनाया है। विश्व परिवर्तन का ये कार्य बहुत विशाल कार्य है और उसमें हम सब बाबा के राइट हैंड्स हैं, सभी राइट हैंड। तो इसीलिए ब्रह्मा की सहस्त्रों भुजाओं का गायन है, क्योंकि बाबा खुद अकेला इस विश्व परिवर्तन के कार्य को नहीं करता है, लेकिन बाबा के सभी बच्चे उनका सहयोग होता है उसके अंदर। तो हम सभी सेवा करते हैं, कई प्रकार से हम सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा हम कहते हैं, उनसे सेवा करते हैं और उसमें भी स्व की सेवा पहले है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ऐसा कहते हैं। तो स्व परिवर्तन करना ही विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग देना है। अगर हमने अपना परिवर्तन नहीं किया तो फिर हम अनेकों को प्रेरणा भी नहीं दे सकेंगे। तो पहले स्व की सेवा है और स्व की सेवा के लिए खुद को ज्ञान, योग, धारणा, इन तीनों विषय में संपन्न बनाना। तो ज्ञान के विषय में संपन्न बनाने का मतलब ये नहीं जो संडे की मुरली में सुना कि सिर्फ साज का आनंद लेना, साज की खुशी में रहना नहीं, लेकिन उसके राजों में जाना। राजों में जाना माना उसकी गहराई में उतरना, उसका स्वरूप बनना। तो जो भी आत्मा के ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुभवी बनकर के, स्वरूप बनकर के फिर हम दूसरों को भी सुनाएं। योग के स्टेजेस में उसमें पावरफुल अनुभव करना, योग से शक्तियों का अनुभव करना, जब भी समय मिले स्वयं के योग के खाते को जमा करना, फिर धारणा में गुणों का अटेंशन रखना, जो भी गुण है, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, पवित्रता, हम जानते हैं कितने गुण है, 36 गुण है। तो उन गुणों में से किस गुण की मुझ में कमी है, किस गुण में मुझे अपने आप को संपन्न बनाना है, क्योंकि सर्व गुण संपन्न बनना है ना। तो कुछ गुण तो हमारे गॉड गिफ्ट होते हैं, हमारे संस्कारों के रूप में चले आते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हमारी गॉड गिफ्ट होती हैं, हाँ वो भी विशेष होती हैं। तो वो अपनी कमी को पहचान कर किस गुण से उसे हमें भरना है। तो ये स्वयं का पुरुषार्थ, ये स्व सेवा, इसमें भी समय लगता है हमें। फिर बाबा कहता है धीरे धीरे स्व पुरुषार्थ का भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि आत्माओं की सेवा इतनी अधिक होगी कि अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे, अभी फिर भी समय मिल रहा है। फिर दूसरा है, हम यज्ञ सेवा करते हैं सेंटरों पर, जहां भी हम क्लास करते हैं, जब भी कोई सेवा के कार्यक्रम होते हैं, हम सभी को जो सेवा हमारी योग्यता अनुसार दी जाती है, क्योंकि सभी के सहयोग से होता है कोई भी कार्यक्रम, एक टीम वर्क होता है, कोई भी एक व्यक्ति किसी भी सेवा के बड़े प्रोग्राम को सफल नहीं कर सकता। तो फिर हम वो तन धन मन, तन मन धन तीनों लगा करके यज्ञ सेवा में भी सहयोग देते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। तो जो चांस हमें मिले जो भी सेवा का, वो हमें लेना चाहिए। जो हमने सुना, बहुत हमारे सब वरिष्ठ भाई बहने बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे कि कैसे उन्होंने यज्ञ में जो भी सेवा मिली, कितने प्यार से उन्होंने बाबा की वो सेवा की, और कैसे उन्हीं सेवा ने फिर उन्हें आगे बढ़ाया। फिर हम वाणी के द्वारा भी सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी हद की सेवा है और चांस प्रमाण होती है। वाणी की सेवा भी हम हमेशा नहीं कर सकते, और वाणी की सेवा से हम सब तक भी नहीं पहुंच सकते, कुछ आत्माओं तक हम पहुंचते हैं। चलो कोई टीवी में प्रोग्राम देता है, या ऐसे कोई विहंग मार्ग की सेवा बाबा कहता है आज पढ़ती जा रही है, यूट्यूब पर आते हैं या इंटरनेट पर आते हैं, जो भी है, तो भी एक लिमिट है कि इतने हजारों तक पहुंच गए, कोई लाखों तक पहुंच गए, लेकिन विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचने की सेवा कौन सी है? मनसा सेवा है कि एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। लेकिन अगर हम देना चाहते हैं तो फिर हमारी मनसा कितनी पावरफुल चाहिए, उतना पावरफुल लाइट हाउस भी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता जी सुना रहे थे कि कितने फिट का ऑरा बनता है, हमारा जो स्थिति होती है 8 फिट का बनेगा या 20 फिट का बनेगा। तो जैसे बल्ब भी होते ना, वैरायटी होते हैं, 0 वॉट का बल्ब होता है, तो 0 वॉट का बल्ब जो होता है उसकी रोशनी कितनी होती है, एक कमरे में सिर्फ रोशनी हो जाए, आप उसमें काम नहीं कर सकते, सिर्फ रोशनी होगी, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। फिर 100 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो इतनी रोशनी होती है कि आप उसमें काम भी कर सकते हैं। अगर हम 1000 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो एक मैदान रोशन हो जाता है पूरा, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें ऐसे फोकस लगाए जाते हैं। और फिर लाइट हाउस मीलों तक रोशनी फैलाता है, चारों तरफ फैलाता है। तो अगर समुद्र में कहीं भी मीलों दूर कोई जहाज होगा तो उसको गाइडेंस मिलती है कि इस तरफ जाना है। तो मेरी मनसा शक्ति कितनी पावरफुल है, उतना ही हम दूर तक सकाश दे सकते हैं, उतने ही दूर तक हम वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। फिर हम सब करते तो हैं मनसा सेवा, लेकिन कई बार, क्योंकि मनसा सेवा तो सूक्ष्म सेवा है ना, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। वाचा सेवा आप करते हैं, समझ में आता है उस आत्मा का जो हमें रिटर्न मिलता है, या कर्मणा सेवा भी हम करते हैं, दिखाई देती है, लेकिन मनसा शक्ति अदृश्य शक्ति है। हमारे वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, पता चलता है नहीं पता चलता है। तो फिर कई बार हम मनसा सेवा कर रहे होते हैं किसी भी आत्मा के लिए या किन्हीं आत्माओं के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट देखने में नहीं आती, तो फिर संशय होता है कि क्या हो रहा है, कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है उसका, तो बाबा हमें कहते हैं मनसा सेवा की भी विधि है, अगर हम विधि से करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। अगर हम जैसे चाहे वैसे संकल्प देते हैं आत्माओं के प्रति तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो मनसा सेवा की विधि क्या है? सदा ही हमारे संकल्प शुद्ध हों, श्रेष्ठ हों, सदा ही परोपकार की भावना हो, निस्वार्थ भावना हो, दातापन की भावना हो, रहम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, सदा, इसमें सदा शब्द अंडरलाइन है। यहाँ क्या होता है, जिनके प्रति हम मनसा सेवा करना चाहते ना, वो कहीं ना कहीं हमारे विरोधी होते हैं। जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, जिनसे हमें स्नेह सहयोग मिलता है, उनके प्रति तो हम नेचुरल स्नेह सहयोगी रहते हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जो उनकी हम मनसा सेवा करें। किनकी हम मनसा सेवा करते हैं, किनकी करते हैं? हाँ, या तो परिवार में वो ज्ञान में नहीं चलते, या हमारे लिए कोई विघन रूप बनते हैं, या कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनके प्रति हम ये चाहते हैं ये ज्ञान में चले, या जो कुछ भी। तो जब हम ऐसी आत्माओं के प्रति अपनी भावनाएं देते हैं तो वो भावनाएं सदा एक जैसी हो, है ना, सदा ही शुभ भावनाओं, बदलती नहीं रहनी चाहिए। पर होता क्या है कि यदि हम उनके समीप रहते हैं तो कभी तो हमारी भावनाएं शुभ रहती हैं, जब ज्ञान का प्रभाव हमारे पर होता है, योग की शक्ति हमारे अंदर होती है, तब तो हमारी भावनाएं शुभ रहती हैं। लेकिन कभी कभी उनके व्यवहार से अगर हम ज्यादा तंग आ जाते हैं तो क्या होता है, भावनाएं बदल भी जाती हैं, तो बीच बीच में दूसरी भावनाएं भी आ जाती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी चले जाते हैं, फिर हम फिर योग में बैठते हैं, फिर उनके प्रति वही शुभ भावनाएं देने की कोशिश करते हैं। तो योग के समय तो हम दे लेते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, उनके व्यवहार के प्रभाव में ही हम होते हैं और उनके ही जैसे वाइब्रेशन हमारी वृत्ति से भी जाते हैं, तो क्या होता है, प्लस माइनस जीरो हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता। फिर हम सोचते इतने समय से हम मनसा सेवा कर रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं देखने में आ रहा, उसका कारण है हमारी विधि में कमी है। अपनी विधि को हमें ठीक करना होगा, सदा शुभ भावना हमारी रहे। फिर मनसा सेवा जो सूक्ष्म है वो ज्यादा पावरफुल है अन्य सभी सेवाओं से, जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है और अंतिम समय की भी यही सेवा है। हम विज्ञान में भी देखते हैं, विज्ञान जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना पावरफुल हो रहा है। आज कितने विज्ञान के साधन हमारे सामने हैं जो हमने पहले देखे और आज उनका रूप देखा। आप टेलीफोन देखते हैं, टेलीफोन पहले क्या था, एक स्थान पर खड़े होकर के आपको बात करनी, नंबर घुमा घुमा के, फिर धीरे धीरे उसमें और एडवांस रूप आया कि आप कॉर्डलेस फोन से बात कर सकते हो, पूरे घर में आपकी रेंज होगी, घर में कहीं से भी बात कर सकते हो। फिर और इम्प्रूव हुआ तो मोबाइल फोन आ गया, मतलब आप कहीं से भी बात कर सकते हो, आप केवल घर की लिमिट नहीं है, कहीं भी आप होंगे कहीं से भी आप बात कर सकते हो, पर वो सिर्फ मोबाइल फोन था और कुछ नहीं था। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आया तो एक ही मोबाइल फोन में और साधन भी आ गए, उसी में ही ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, उसी में ही कैमरा भी आ गया, उसी में घड़ी आ गई, उसी में टॉर्च आ गया, और आज स्मार्टफोन क्या है, अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है तो सारी दुनिया आपके हाथ में है, ऐसे ही कहेंगे, आप नेट चलाते हैं, जो भी इंटरनेट से संबंधित जितने भी आपके एप्स हैं, एक टच में आप कुछ भी जो सुविधा चाहें वो उससे आपको मिल जाती है। तो कितना पावरफुल हो गया वो फोन, जितना छोटा होता गया उतना कितना पावरफुल हो गया। और आज देखो एक छोटी सी चिप है, वो एसडी कार्ड कितना छोटा होता है और उसकी कितनी मेमोरी है, उतना ही डाटा उसके अंदर, अभी देखो पेन ड्राइव दे रहे हैं आपको, किसी जमाने में क्या मिलते थे, कैसेट मिलते थे, फिर कैसेट से क्या हुए, सीडी हुए, फिर डीवीडी हुए, फिर क्या हुआ, हाँ, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी साइज चेंज होती गई और अब पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव से भी छोटा क्या है, एसडी कार्ड, वो जैसे मैंने अभी बताया कि एक छोटा सा एसडी कार्ड। तो जितना सूक्ष्म हुआ उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। एक कैसेट में सिर्फ 12 गीत हुआ करते थे, एक MP3 में कितने हजारों गीत आने लग गए, और आज एक पेन ड्राइव कितने GB की है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने वीडियो होंगे, कितने गीत होंगे, कितने क्लासेस होंगे, कोई लिमिट है उसकी। तो कितनी पावर बढ़ गई, हो गई छोटी सी, साइज कितना हो गया, वो टेप रिकॉर्ड कितना बड़ा होता था, वो पेन ड्राइव की साइज कितनी छोटी हो गई और पावर कितनी बढ़ गई। जैसे एटॉमिक वेपन्स के लिए भी कहते हैं, लोग पहले युद्ध के मैदान में लड़ते थे, एक तीर चलाते थे, तलवार चलाते थे, एक से एक मरता था। आज एक बॉम्ब डालते हैं छोटा सा, कितने लोग मर जाते हैं, पावर बढ़ गई ना उसकी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जितना सूक्ष्मता में जाएंगे उतना वो शक्तिशाली होगा। तो मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है, इसीलिए सबसे शक्तिशाली सेवा है। लेकिन बस वही है कि उस विधि से हम उस सेवा को करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी मनसा पावरफुल बने उसके लिए हमें यह टेंशन देना है कि हमारा मन, जो हम अपनी शक्ति को ड्रेन कर लेते हैं, वो जाती है हमारी व्यर्थ संकल्पों में। योग में हम शक्ति जमा करते हैं, लेकिन दिन भर के कार्य व्यवहार में कोई ना कोई बातों के व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं तो हमारी शक्ति जाती है। कई बार हम नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं तो नेगेटिव संकल्प कई गुना हमारी शक्ति को कम करते हैं, और उसमें भी अगर विकारों के संकल्प चल गए मन के अंदर तब बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो हम कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इस तरह के अगर वाइब्रेशंस, ये संकल्प मन में आए तो तुरंत आत्मा कमजोर हो जाती है और फिर समस्याएं आती हैं। अगर हम क्यों क्या में चले जाते हैं, ज्यादा अगर उसमें चले जाते हैं, समस्या की गहराई में चले जाते हैं, कारण में चले जाते हैं, इसको बाबा कहता है, उसमें भी हमारे मन की शक्ति बहुत चली जाती है। उस शक्ति को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है, जो संडे की मुरली थी हमारी, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, या शुभ चिंतक बनना है। सार रूप में बाबा ने कहा हमें शुभ चिंतक बनना है। तो सारा दिन बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, व्यर्थ चिंतन की बजाय उसको फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। जैसे ही पता चले कि मेरा मन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है, किन बातों में मैंने अपना मन लगा रखा है, अटेंशन नहीं रहता है ना तो मन चला ही जाता है, क्योंकि जन्मों से आदत पड़ी हुई है मन को। तो बार बार अटेंशन और चेकिंग कि मेरे कौन से संकल्प मन में चल रहे हैं, ज्ञान का चिंतन है या पर चिंतन, पर दर्शन है। ज्यादातर पर चिंतन में मन होता है, जिस भी आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है, सूक्ष्म रूप है ना, माया के जो सूक्ष्म रूप है वो ज्यादा हमारे मन को खींचते हैं। मोटे रूप में विकारों को हम जीत चुके हैं अभी, वो हमें नहीं तंग करते, लेकिन किसी के प्रति क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें लगता है ये आत्मा वो नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, तो वो सूक्ष्म भाव जो मेरी इच्छा है उसके प्रति वो पूरी नहीं हो रही, कहीं कहीं फिर वो घृणा भाव में भी उस आत्मा के प्रति बदल जाता है, तो वो व्यर्थ संकल्प। या किसी के प्रति हम प्रभावित हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्नेह, लगाव, झुकाव, जो भी सुनाया क्लासेस में, लगाव, झुकाव, प्रभाव में हम आ जाते हैं, तो वो आत्मा भी मन बुद्धि को खींचती है। तो हम योग से शक्ति तो भरते हैं, लीकेज है, लेकिन एक बाल्टी में हम पानी भरते हैं और नीचे अगर होल है तो क्या होगा, पानी बहता जाएगा, फिर हम कितनी भी कोशिश करें वो बाल्टी पूरी कभी भी भरेगी नहीं। तो एक तरफ तो योग लगा के हम शक्ति जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई सारे दिन में ऐसा कारण बनता है जो हमारी मन की शक्तियां लीकेज होती जाती हैं, तो मनसा इतनी पावरफुल नहीं बन पाती है। फिर बाबा हमें कहते हैं एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग हमें करना है, एकाग्रता, एकांत और अंतर्मुखता, ये तीन जो हैं वो ऐसे हमारे विधियां हैं जो हमारे मन को पावरफुल बनाती हैं। तो जब भी हम योग में बैठते हैं, कोई भी एक स्थिति में या एक संकल्प में मन टिक जाए, तो जब एक संकल्प में मन टिक जाता है तो वो संकल्प में इतनी पावर आ जाती है कि उस स्थिति में हम जो भी किसी आत्मा के प्रति संकल्प करेंगे वो तुरंत सिद्धि मिलेगी। और ऐसा अनुभव बहुतों को होता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है कि पूरी एकाग्रता नहीं बनती। हम चाहते हैं कि परम धाम में बीज रूप स्थिति में बाबा की याद में जितना समय, जिस समय चाहें, जिस समय जितना समय हम मन को एकाग्र करना चाहें परम धाम में, मानो आधा घंटा, जैसे हम यहाँ एक घंटा योग में बैठते हैं शाम के समय, पूरा एक घंटा आप अपने आप को ये संकल्प देते, लक्ष्य देते हैं कि मुझे परम धाम में बाबा के पास ही लव में लीन, लगन में मगन रहना है, परम धाम से नीचे नहीं आना चाहिए मेरा मन, फिर जो भी मेरी रूढ़िहान चले सिर्फ बाबा और मैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं रह सकते हैं, उसको एकाग्रता कहते हैं। ऐसे नहीं पांच मिनट ऊपर थे फिर नीचे आ गए, फिर कोई बात ने नीचे खींच लिया मन को, फिर याद आया अरे हम तो बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रहे थे, उसी अनुभव में रहना है, फिर गए परम धाम में, फिर थोड़ा समय टिके, फिर कोई ना कोई बात ने फिर नीचे खींच लिया। तो अगर इस तरह का योग है हमारा जो गुप्ता जी सुना रहे थे मोमबत्ती वाला योग, उसमें वो पावर नहीं बनती, वो ज्वालामुखी योग जो बाबा कहता है वो एकाग्रता वाला योग हमारा नहीं हो पाता है। तो फिर हमारी मनसा सेवा हम जो करना चाहते हैं वो मनसा सेवा की सिद्धि हमें पूरी नहीं मिलती है। हम सुनते हैं वैज्ञानिक लोग कितनी एकाग्रता से किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तब कोई नई इन्वेंशन संसार के सामने आती है, और आज कितने सुख उन्होंने दिए हैं मनुष्य को उस एकाग्रता से कार्य करके जो उन्होंने खोजा है। तो कई वैज्ञानिकों के जीवन के तो ऐसे किस्से आते हैं, जैसे लुई पाश्चर थे, उनको अपनी प्रयोगशाला में वो काम कर रहे थे, उनकी शादी का दिन तय था, तो उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि आज मेरी शादी का दिन है, और फिर लोगों ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, फिर कभी सोचेंगे, लैब से निकल करके ही नहीं आए वो। और ऐसे ही एक थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिसके कारण आज हम सब रोशनी में बैठे हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो देखती थी कि ये महीनों घुसे रहते हैं लैब में, बाहर ही नहीं आते, वहीं खाते पीते हैं। तो एक बार उसने कहा कि बहुत काम कर लिया आपने, थोड़ा समय जहां जो स्थान आपको अच्छा लगता है वो स्थान पर घूमने का प्रोग्राम बना लो, फिर भले आकर के, ये तो आपको करना ही है। तो जैसे ही वो पत्नी ने कहा वो वापस लैब में घुस गए। तो उसने कहा आप वापस क्यों लैब में घुस गए? तो बोला यही स्थान मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ऐसे हुए हैं। और एक एक का मिसाल मुझे याद है, जिनका दादी जानकी जी के साथ एक प्रोग्राम हुआ था, यूरी गैलर उसका नाम था, वो साइकोलॉजिस्ट था इसराइल का। तो उसकी विशेषता थी उस भाई की, वो लंदन में रहने लगा था कुछ समय से, तो वो अपने कुछ एकाग्रता के प्रयोग दिखाता था। अगर वो घड़ी की सुई को देख लेगा, एक मिनट उसने घड़ी की सुई को देख लिया और कहा स्टॉप, तो वो घड़ी की सुइयां स्टॉप हो जाएंगी। फिर अगर उसने संकल्प किया कि वापस घड़ी चलने लगे, तो वो घड़ी चलने लगेगी। और ऐसे ही अगर उसने कार की चाबी को देख लिया थोड़ी देर, तो वो चाबी मुड़ जाएगी, फिर सीधी भी कर देगा वो उसको। अगर हथेली पे मूंग रखे हैं, तो वो थोड़े समय तक एकाग्रता से मूंग को देखेगा, तो वो मूंग अंकुरित हो जाएंगे, हथेली पर ही मूंग अंकुरित हो जाते। तो वहां लंदन में एक बड़ा हॉल बुक करके दादी जी, दादी जानकी जी के साथ उसका एक प्रोग्राम रखा गया, पब्लिक प्रोग्राम रखा गया कि वो अपना ये शो दिखाएगा पब्लिक के सामने। तो दिखाया उसने, कई लोगों को बुला लिया सभा से और उनकी चाबी मोड़ दी। तो पहले वो थोड़ा घबरा भी गए कि कार की चाबी मुड़ गई, अब कार कैसी चलेगी। फिर उसने उसको बिल्कुल वैसा का वैसा सीधा भी कर दिया और उसने मूंग अंकुरित करके दिखा दिए पूरी सभा के अंदर। फिर दादी जी को कहा गया, तो दादी ने कहा मैं इसके जैसा चमत्कार तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी सभा को शांति का अनुभव जरूर करा सकती हूँ। तो दादी ने कमेंट्री से योग कराया करीब 10-15 मिनट। उस हॉल में करीब मैं समझती हूँ 500-700 लोग होंगे। विदेशों में इतने लोग इकट्ठा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अल्बर्ट हॉल नाम था उसका, मुझे याद है करीब 20 साल पहले की ये घटना है। तो दादी ने वो जो इस शांति का अनुभव कराया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस पूरी सभा में। तो वो जो मनोवैज्ञानिक था वो इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि जरूर मैं ये छोटे छोटे प्रयोग करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है लोगों को, जरूरत तो शांति की है। और ये जो शांति का अनुभव दादी जी ने कराया, ये मैं नहीं करा सकता हूँ। तो बोला ये इस शक्ति से बहुत बड़ी शक्ति है जो आज संसार को चाहिए। तो ऐसे एकाग्रता से बाबा हमें कहते हैं, हम जिस आत्मा को जो चाहिए वो अनुभव करा सकते हैं। हमारी दादी जानकी जी तो वैसे भी कहेंगे वो वंडर हैं, बाबा की एक वंडर हैं। उनके ऊपर तो कई यूनिवर्सिटीज में उनके दिमाग पर प्रयोग किए गए। टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, उन्होंने दादी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि देखें योग बल से इनके दिमाग में क्या परिवर्तन आए हैं। वैज्ञानिक लोग तो उनको प्रमाण चाहिए ना, बिना प्रमाण के मानते नहीं है। तो ईजी मशीन लगाई उनके दिमाग पर, तो देखा ईजी मशीन में डेल्टा वेव्स आ रही हैं। डेल्टा वेव्स दिमाग में तब आती हैं, चार प्रकार की वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो नॉर्मली जब हम ऐसे एक्टिव होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स बनती हैं। लेकिन जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं जिसमें सपने भी नहीं होते, उस स्थिति में हमारे ब्रेन में डेल्टा वेव्स आती हैं। और दादी की डेल्टा वेव्स आ रही थी जब दादी वहां बैठी थी और दादी के ऊपर वो मशीन लगा करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो एक्टिव थी दादी, तो उनको डाउट हुआ कि हमारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने वो मशीन निकाली दादी पर से और एक दूसरे उनका जो लैब असिस्टेंट था उसके ब्रेन पर लगाया। तो जैसे ही वहां लगाई तो वो सारे वापस वही बीटा वेव्स आने लगे जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को आते हैं। तो देख लिया मशीन तो ठीक है। फिर दादी जी के ऊपर लगाई, तो जैसे ही दादी जी पर लगाई वो मशीन, फिर से वो डेल्टा वेव्स आने लगे। तो उनको लगा ये योग कर रही हैं शायद, इसीलिए योग के कारण इन्होंने अपने दिमाग को इतना शांत कर लिया है कि इनके ये एक्टिव स्टेज में भी डेल्टा वेव्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा दादी जी हम आपको शांत नहीं बैठने देंगे, हम आपसे कुछ कुछ प्रश्न करेंगे, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपकी ब्रेन वेव्स कैसे आती हैं। दादी ने कहा ठीक है। फिर उनसे प्रश्न पूछने लगे, तो दादी ने प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, तो देखा फिर भी डेल्टा वेव्स हैं। फिर कहा अच्छा आप जो 100 की गिनती है उसमें से 7 कम करके उल्टा बोलो, माना दिमाग चलेगा ना, इतना सोच के बोलना पड़ेगा। वो सब भी किया दादी ने, तो भी डेल्टा वेव्स आ रहे हैं। कई तरह से उन्होंने ट्राई कर लिया, और मैथमेटिक्स के सवाल दिए सॉल्व करने के लिए, तो भी डेल्टा वेव्स आ रहे हैं। तब कहा दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, कोई भी एक्टिविटी करा लो इनके दिमाग की स्थिति बिल्कुल एक रस है, एक जैसी है। तो वो बाबा हमसे चाहते हैं कि चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी हलचल वाली परिस्थितियां आ जाएं, अंत में ऐसे ही होना है। अंतिम समय की तैयारी का क्लास सुना ना हमने, लेकिन उस स्थिति में भी हमारे मन की स्थिति अचल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे, वो कब होगा? जब बुद्धि के तार जैसे जिस समय जो स्टेज बनाने का सोचा उसी समय हमारी वो स्टेज बन जाए, वो एकाग्रता की स्थिति। माना कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वातावरण हमारी बुद्धि को खींचे नहीं, उससे हम हलचल में ना आए, तो वो एकाग्रता की स्थिति हमें बनानी है, जिसको बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मैं मन को कहूं मेरा मन स्टॉप हो जाए, उसी समय ब्रेक लग जाए, इतनी कंट्रोलिंग पावर हो हमारी। कोई परिस्थिति के कारण मेरा मन बहुत संकल्पों की हलचल में, क्योंकि हलचल तभी होती है जब कोई परिस्थिति आती है, कोई मेरे मन पसंद बात नहीं है, या कोई भी मतलब ऐसा विघ्न आ गया जो हमने सोचा नहीं, अचानक कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई जीवन में, या कोई ऐसा रोग भी आ गया, जैसे हमने सुना अभी कि कैसी कैसी बीमारियां भी हुई हमारे महारथी भाई बहनों को, हमारी दादियों को भी सारे हिसाब किताब चुकतू करने होते हैं। जैसे हमने सुना, गुलजार दादी का सुना, हमने बड़ी दादी को देखा, बड़ी दादी के बहुत समीप रहे। कोई भी बात ऐसी आती है वो हमारे को बहुत संकल्पों की हलचल में ले जा सकती है, लेकिन हमें फुल स्टॉप लगाना आता है। उसी समय फुल स्टॉप कैसे लग सकता है? बाबा ने हमें दो तीन बातें बहुत अच्छी कही हुई हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं? जो होगा अच्छा होगा, तो सोच भी रहे होते हैं कि अच्छा हो रहा है, इसी में कल्याण है, और हिल भी रहे होते हैं, क्योंकि हमारा फुल स्टॉप क्या हो जाता है? फुल स्टॉप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी वो क्वेश्चन मार्क में बदल जाता है, क्योंकि हमने ड्रामा के ज्ञान को इतना पक्का नहीं किया। बाबा कई बार कहते हैं कि ये जो हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ये अस्त्र शस्त्रों का हमें रोज अभ्यास करना है, तभी सही समय पर सही निशाने पर वो तीर लगेगा। जैसे मिलिट्री वाले लोग होते हैं, वो भी अपने जो शस्त्र होते हैं उनको रोज चलाने का अभ्यास करते हैं, चाहे युद्ध नहीं होता है हमेशा, लेकिन वो शस्त्रों को चलाने का अभ्यास नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने शस्त्र नहीं चलाए और समय पर दुश्मन सामने आ गया तो उनका निशाना चूक सकता है, निशाना लगाने का अभ्यास नहीं होगा तो। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ सुना है, रोज मुरली में हम सुन लेते हैं, कोई भी दिन मुरली में ऐसा नहीं होता जिस दिन ड्रामा की पॉइंट नहीं होती है, लेकिन हमने उसे रोज अभ्यास में नहीं लाया है। तो जब समय आता है, जब माया दुश्मन हमारे सामने होती है, तब हमारा वो तीर हम निकालने की कोशिश तो करते हैं पर चूक जाते हैं, वो सही निशाना लगता नहीं, तो फुल स्टॉप भी लगता नहीं। कल्याण है वो समझ में आता ही नहीं, सोच रहे कल्याण है कल्याण है, पर क्या कल्याण है प्रश्न में चले जाते हैं। अरे इसमें क्या कल्याण है, कोई कल्याण तो दिखाई नहीं दे रहा, उस समय तो दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि परिस्थिति की गहराई में जाने के लिए बाबा ने हमें कहा, मोती कहाँ मिलते हैं? गहरे सागर के तले में मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते। तो बाबा तो हमें उसकी बहुत सारे कल्याण बताते हैं कि जो परिस्थिति आई है वो हमें मजबूत बनाने आई है, वो हमारा पेपर है जिसे हम पास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम पास विद ऑनर होते हैं कि नहीं होते। क्वेश्चन पेपर आएगा तभी पता चलेगा कि हमने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, तो वो हमारी पढ़ाई का पेपर बन के भी हमारे सामने आता है जिसे हमें पास करना है, जिसे बाबा कहता है पास पास पास। तीन पास होने चाहिए हमारे पास, कौन से तीन पास? कौन से तीन पास? बाबा के पास रहना है, पास करना है, और जो पास हो गया वो पास्ट इज पास्ट। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू से भी हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कल पहले भी मैंने इसको पार किया था, आज भी आया, तो कितनी बार मैंने इसे पार किया है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात सामने आती है तो हमें ज्यादा बड़ी लगती है। जिस काम को हम कई बार कर चुके होते हैं उसके लिए हम सोचते हैं ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जो एक पहली क्लास का बच्चा होता है उसके लिए दसवीं क्लास के बारे में सुनना ऐसा लगता है कि कितना कठिन होगा, दसवीं क्लास का पेपर देना कितनी कठिन बात है, लेकिन जो दसवीं क्लास तक पहुंच चुका होता है और जो उसको पढ़ता है उसे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो हम पास कर लेंगे, पढ़ लिया है हमने इसको। तो वही जो एग्जाम्स कई बार दे चुका है उसके लिए एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए बाबा हमें नथिंग न्यू की बात भी बताते हैं। तो जो भी पॉइंट्स हमें ज्ञान के मिलते रहते हैं समय प्रति समय, जब हम उनको मनन करके अपना बना लेते हैं, तब वो समय पर हमें याद भी आता है और समय पर हम उसे यूज भी कर पाते हैं और फिर हम सफल होते हैं। नहीं तो मालूम है, ज्ञान सब मालूम है, ऐसे नहीं कि नहीं मालूम है, लेकिन समय पर चूक जाते हैं, बाद में याद आता है फिर, तो फुल स्टॉप नहीं लगता है। और अंतिम समय में यही होगा कि हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा के सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये मन की स्थिति हमारी हो, फिर एकाग्रता के साथ साथ एकांत, एक के अंत में खो जाना। जब तक पूरा कनेक्शन रिलेशन बाबा के साथ नहीं है, वो पावर हमारे अंदर भरेगी नहीं। तो पूरा ही सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ हमारा हो, हर समय का अनुभव हो, कोई भी आत्मा का आधार नहीं ले हम। अगर अभी भी कोई आत्मा का आधार है, वो हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है हमारी, उन आधारों को छोड़ करके बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है, पूरा कनेक्शन रिलेशन बाबा के साथ हो। और अंतर्मुखता के विषय में तो हम विस्तार से सुन चुके हैं, यानी जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्मिक गुणों में स्थित होते हैं, तभी हम वो वाइब्रेशंस अपने आसपास के वायुमंडल में फैला पाते हैं। आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, पवित्रता के वाइब्रेशंस। फिर मनसा सेवा जब हम करते हैं, तब उसके लाभ किस तरह से हम आत्माओं को पहुंचाते हैं कि कोई भी दूर बैठी हुई आत्मा है, उसे हम बाबा का संदेश दे सकते हैं, उस आत्मा का हम आह्वान कर सकते हैं, हम उसको भाग्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। अगर कोई हिम्मतहीन है तो उसके अंदर उत्साह का संचार कर सकते हैं। कोई दिल शिकस्त आत्मा है, उसे हम दिल खुश बना सकते हैं, जो संडे की मुरली में भी बाबा ने कई हमें इस तरह की बातें समझाई। और उसके प्रयोग कई हमारे भाई बहने करते भी रहते हैं, और यहां तक कि हम किसी की बीमारी के समय भी अगर उसको सकाश देते हैं तो उसकी बीमारी को ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। अपनी खुद की बीमारी को भी हम हील कर सकते हैं, जो हमारा कैट प्रोग्राम चलता है, जो बताया हार्ट पेशेंट्स के लिए जो प्रोग्राम चलता है, वो क्या है, अपनी बीमारी के प्रति योग का प्रयोग है। और जब हम उसका प्रयोग अपनी बीमारी के प्रति करते हैं तो कुछ समय के अंदर उसके रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं। तो जितनी मनसा शक्तिशाली होगी, जितनी हमारी विधि सही होगी, उतना ही जल्दी वो रिजल्ट्स हमें सामने आएंगे। जो हम सुनते हैं साकार बाबा के समय, जो आदि में ओम मंडली में था, आत्माओं का आह्वान कैसे किया, साक्षात्कार हो गए, कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, उसके साथ साथ बाबा के फरिश्ता रूप का भी साक्षात्कार होता था, और वो कृष्ण इशारा करता था इनके पास जाओ, इनके पास जाएंगे तो आपको जो प्राप्ति चाहिए वो होगी। और वो आत्माएं इस तरह से धीरे धीरे बाबा के पास इकट्ठी हुई। और जो आदि से अंत की बात है, हम आत्माओं को भी ऐसी ही सेवा करनी है, तो फिर उन आत्माओं को वो अनुभव हो, अपने आप वो सेंटर पर आएंगी, अपने आप वो मधुबन आएंगी, हमें उन आत्माओं तक जाकर के संदेश देने की सेवा, जो वाणी द्वारा सेवा है बाबा कहता है, कितनी आत्माओं की करेंगे, कितने करोड़ों तक पहुंचेंगे, उसकी लिमिट है, लेकिन मनसा के द्वारा हम ये सेवा कर सकते हैं। और ये जो स्वस्थ होने की बात है, इसके ऊपर तो बहुत भाई बहनों के प्रयोग हैं। हम हॉस्पिटल में थे कुछ वर्ष, हमने भी कई प्रयोग किए इससे रिलेटेड। तो ऐसे तो मैं समझती हूँ मेरे 8-10 इस तरह के प्रयोग हैं, जिसमें बहुत अच्छे परिणाम मिले मनसा सेवा के। लेकिन मैं एक दो आपके सामने रखना चाहूंगी कि एक बार यहाँ लोकल माउंट आबू का पेशेंट था और उसको हार्ट अटैक हुआ, ज्ञान में नहीं चलता था वो, ऐसे लोकल जैसे आते हैं हॉस्पिटल में, और उस समय हमारे हॉस्पिटल में बहुत सुविधाएं भी नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर भी नहीं था कि अगर किसी को सांस नहीं आ रही है तो जैसे मशीन पे लगा देते ना, वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, उस समय नहीं था हमारे पास। और मेरी नाइट ड्यूटी थी उस समय, और वो पेशेंट ऐसे नाइट में आया और इतनी सीरियस हालत में था क्योंकि उसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, तो बेहोशी की हालत में ही था, और देखा कि सांस भी नहीं ले पा रहा है और बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी। और उसके रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों को सबको बता दिया कि कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, और हम उनको सांस दे रहे थे। वो बैग आता है, उसको अम्बू बैग बोलते हैं, तो उसको दबा दबा के उसको सांस चला रहे थे, अपनी सांस वो नहीं ले पा रहा था। तो हमें करना ही था उसके लिए, ये सारा मैन्युअली करना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाबा हमें कहते हैं, हम कोशिश करते हैं, इस आत्मा को वाइब्रेशन देते हैं, इतनी सीरियस से ये आत्मा, इसको भी सहयोग चाहिए। तो रात भर जाग ही रहे थे, तो बीच बीच में जैसे जैसे माइंड फ्री होता था उस आत्मा के प्रति योगदान करना शुरू किया। नाइट ड्यूटी तो पूरी हो गई मेरी और मैं वापस आ गई। सभी कमरों में, जो भी आईसीयू सीसीयू के कमरे हैं, वहां सभी कमरों में बाबा का चित्र लगा हुआ है ना, शिव बाबा की लाइट भी है और ब्रह्मा बाबा का चित्र भी लगा हुआ है। फिर ड्यूटी के बाद, उस दिन की ड्यूटी के बाद, दूसरे दिन जब मैं वापस ड्यूटी पर आई, तब तक वो रिकवर हो चुके थे, वो बैग वैग से सांस नहीं दी जा रही थी, सांस खुद ले रहे थे और थोड़ा होश में भी थे, बात कर सकते थे। तो मैं आई तो मुझे अच्छा लगा कि पेशेंट अभी भी है। मैंने ऐसे सोचा कि हो सकता है अब तक तो उसकी डेथ हो गई होगी करके, क्योंकि वो इतना सीरियस था, लेकिन देखा पेशेंट अभी भी है। और जब मैं उसके सामने आई उस समय, क्योंकि जब पेशेंट आया था तब मैं ही ड्यूटी पे थी, बाद में ही उसका होश गया, तो उसने मुझे बोला कि डॉक्टर, ऐसे ही बोलेंगे पेशेंट तो, कि डॉक्टर कल रात को आपके ये बाबा, ऐसे ही बोला उसने, आपके बाबा, क्योंकि उसके तो बाबा नहीं है, हमारे ही बाबा हैं, तो फोटो लगा हुआ था, उसने कहा कि रात को ये आपके बाबा मेरे सपने में आए। उसने तो सपना ही देखा क्योंकि वो तो होश में नहीं था, तो आपके ये बाबा मेरे सपने में आए और ये बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम ठीक हो जाओगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। तो मैं समझ गई कि क्योंकि हम लोग जो है उनको योगदान दे रहे थे, तो कैसे बाबा ने उस आत्मा को वो टचिंग दी। और सचमुच वो रहा 10-15 दिन हॉस्पिटल में, वो उस सीरियस स्टेज से बाहर आ गया और हमारे हॉस्पिटल से वो ठीक होके गया। हालांकि उसको अहमदाबाद में जाकर के एंजियोग्राफी, फिर बाईपास सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि ब्लॉकेजेस थे उसके, तो ट्रीटमेंट तो पूरा होना था, हमारे हॉस्पिटल में तो ये सब सुविधाएं नहीं है। तो गया अहमदाबाद में, उसने इलाज कराया, और मैं कितने सालों तक, क्योंकि हम नक्की पर जब घूमने जाते थे कई बार तो वो मिलते थे हमें, तो मैंने देखा कि वो थे। तो मतलब ये हमने प्रमाण देखा कि जिसके बचने की 0% भी उम्मीद नहीं थी, वो पेशेंट ठीक होके अस्पताल से गया। एक बार ऐसे ही एक और पेशेंट था जिसको निमोनिया हो गया, वो बीके था, अपना कोई पार्टी में आया हुआ भाई था, उसको बहुत सी इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो निमोनिया होने से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया, उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो सेप्टिसीमिया के कारण उसका ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, मतलब बहुत कम, और उसके भी बचने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो उससे रिकवर नहीं हो रहा था, 2 दिन से उसी स्टेज में चल रहा था। तो उनके संबंधियों को भी बता दिया गया कि वो इतना सीरियस है करके। तो वहां उस समय भी मेरी नाइट ड्यूटी थी और हम बैठे थे क्योंकि जागना ही होता है जब इतना सीरियस पेशेंट होता है वार्ड में। तो मैंने वही प्रयोग किया कि हाँ, हम इनके लिए योगदान करते हैं, इस आत्मा को बाबा का सहयोग मिले, मतलब इनका जो कष्ट है वो कष्ट कम से कम हो। हमारा भाव ये था कि वो उसका दुख जो है वो कम हो, क्योंकि वो भाई होश में था, भले ही उसका बीपी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वो होश में था। तो उसने भी ऐसे ही महसूस किया, सुबह के समय, 4 बजे का समय नहीं, लेकिन सुबह जैसे अमृत वेला पूरा होता है उसके बाद कभी बाबा उसके सामने आए, मैंने बाबा उसको दिखाई दिए और बाबा ने उसको बोला कि बच्चे तुम ठीक हो जाओगे, ये उसने फील किया। फिर मैं बीपी देखने गई सुबह के बाद, जैसे जैसे टाइम एक एक घंटा हमने तय कर रखा था, हर घंटे में उनका बीपी चेक होता था, तो वो मैं चेक करने के लिए वहां गई, तो उसने मुझे ये बताया कि दीदी ऐसा है, बाबा आए थे अभी मेरे सामने और बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम ठीक हो जाओगे, तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि बीपी उसका अभी भी उतना ही था जब मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बाबा ने कहा है तो आप ठीक हो जाओगे। और उसके बाद धीरे 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 उसका बीपी, माना अब तक दवाइयां कोई असर नहीं कर रही थी लेकिन अब असर होने लगा, और 10 बजे तक आते आते सुबह तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया और बाद में वो ठीक होके गया हॉस्पिटल से। तो हमने देखा कि अगर हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी भी आत्मा के प्रति वो योगदान करते हैं, उसको सहयोग देते हैं, तो कई बार वो, हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब भी है, कर्म के हिसाब किताब तो होते ही हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो जरूर उसे सहयोग मिलता है। जैसे दादियों के लिए हम करते हैं, बड़ी दादी के समय भी दादी वेंटिलेटर पे थी और उस समय पूरे ब्राह्मण परिवार को कहा गया कि 10 मिनट हमें सबको दादी के लिए योग करना है। अभी भी जैसे गुजार दादी के लिए भी बीच बीच में डायरेक्शन गए थे, तो हमने देखा कि बहुत स्थितियों में ऐसे था कि डॉक्टर ना उम्मीद हो जाते थे कि नहीं हो सकेगा, लेकिन कैसे वो मिरेकल हो जाता है और असंभव संभव हो जाता है। वो बड़ी दादी के समय भी हमने देखा कि वेंटिलेटर से दादी निकल पाएगी, डॉक्टर ने बिल्कुल साफ ना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दादी वेंटिलेटर से बाहर आ गई और फिर उसके बाद भी 1 साल तक दादी जी थे। तो ये सहयोग मिल जाता है, मतलब भले ही वो खुद इतने तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है, उनको अपनी कर्मातीत स्थिति जैसे बाबा कहता है उसे प्राप्त करना है, तो उनकी अपनी तपस्या तो है ही है। हमने ये देखा कि चाहे कोई भी कंडीशन रही उनके शरीर की, लेकिन दादी जी की अवस्था पर उसका कोई असर नहीं था, जैसे बिल्कुल शरीर से डिटैच उपराम होते हैं। वही जो हम बात करते हैं कि जो हमारी अचल स्थिति होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, वो हम दादी जी को देखते थे। कभी भी उन्होंने भी, जैसे गुजार दादी पूछते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर आप कैसे हैं, कभी भी दर्द में आकर के मुंह से आहा निकाली हो या ये हो रहा है डॉक्टर मुझे ये हो रहा है, कभी भी डॉक्टर उसको शिकायत की हो अपने बारे में या आप क्या दवाई दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, कुछ कहने की जरूरत पड़ी हो दादी को, या बीमारी में कोई उनके चेहरे पर वो कष्ट आता हो, कभी नहीं देखा हमने। माना देह से बिल्कुल उपराम, और हम देखते थे मोस्टली दादी साइलेंस में होती थी, आंख बंद करके जब भी दादी को बिठाते थे दादी जैसे आंख बंद करके ही बैठे होते थे, बहुत कम, बहुत उनको बुलाया जाता था और कहा जाता था दादी जी आपसे मिलने आए हैं, इनको थोड़ा दृष्टि दे दो, तब 1 मिनट के लिए आंख खोलेगी, फिर दृष्टि दी, फिर आंख बंद, फिर बिल्कुल साइलेंस में। तो ऐसे सहज दादी जी ने अपने जो अंतिम हिसाब किताब भी थे ना, उनको पूरा किया। तो कई बार कोई महारथी आत्माओं का जब ऐसा होता है, तब एक बार बाबा का संदेश था कि जो विजयी रतन आत्माएं हैं उनको धर्मराजपुरी से क्रॉस नहीं करना है, और क्योंकि 84 जन्म उन्होंने फुल पार्ट बजाया है, फुल माना पूरा हीरो एक्टर का रोल प्ले किया है, राजा रहे हैं वो जन्मों जन्मों तक, कई बार ऐसे होते हैं कि उनके डिसीजन बहुत आत्माओं को प्रभावित करते हैं, तो वो कर्मों के जो हिसाब किताब होते हैं वो थोड़े साधारण आत्माओं से कहीं अधिक होते हैं, एक तो ये बात, और दूसरी बात सारा यही खत्म करना है, धर्मराजपुरी में जाना नहीं, बाकी का हिसाब किताब अलग है, धर्मराजपुरी में सलाम होगा यानी सजाओं का हिसाब किताब वहां भी खत्म हो सकता है, यहाँ पूरा चुप तो ना भी हो तो भी चल जाएगा क्योंकि उतना पद मिलने वाला नहीं है, उनको तो पूरा ऊंच पद जो विजयी रत्नों का पद है वो उन्हें प्राप्त होना है। तो इसीलिए अंतिम समय भी शरीर की भोगना जरूर, कर्मातीत बनाने के लिए रही। बाबा ने फिर दादी को सर्टिफिकेट भी दिया कि कर्मातीत अवस्था को दादी ने प्राप्त किया, वो तीसरी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा ने एक पाया, ब्रह्मा बाबा के बाद जो तीसरी आत्मा जो कर्मातीत बनी है वो हमारी दादी जी हैं। तो वो हमने देखा, उनकी उस स्थिति को अनुभव भी किया। तो लक्ष्य तो हम सब बाबा के बच्चों का भी यही है कि ऐसे ही हम भी बाप समान कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें। तो हम देह के हिसाब किताब में भी कर्म भोग को भी सूली से काटा अनुभव कर सकते हैं। कर्म भोग को भी कर्म योग से हम सहज, अगर हमारी मनसा पावरफुल है तो हम चुप्तु कर सकते हैं। और विशेष ये मनसा सेवा का अभ्यास किस समय करें हम, तो जो विशेष समय है वो अमृत वेले का समय है। अमृत वेले क्योंकि एक तो प्रकृति का हमें बहुत सहयोग होता है, प्रकृति का वातावरण सात्विक होता है, शांत होता है, सभी आत्माएं सोई हुई हैं तो उनका तमोगुण दबा हुआ होता है, तो हम जो वाइब्रेशन जिस आत्मा के प्रति भेजते हैं लाइन क्लियर होती है तो वो उस आत्मा तक सीधा पहुंचता है, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे हम जब फोन से बात करते हैं तो लाइन क्लियर होती है, यानी टावर जो है वो अगर ठीक है तो बिल्कुल हमारी क्लियर आवाज सुनाई देती है, और अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस है तो फिर हम नहीं ठीक से सुन पाते, वो कट होता है। यानी रिसीवर भी हमारा पावरफुल होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हम दे तो रहे हैं लेकिन रिसीव करने वाला उसे कितना रिसीव कर पा रहा है। तो अमृत वेले का टाइम वो टाइम है कि उस समय हम जो वाइब्रेशंस देते हैं वो सीधा आत्माओं तक उसी रूप में पहुंचते हैं। तो हम आधा घंटा पौना घंटा जो अमृत वेला कर लेते हैं, पावरफुल योग करें, नींद वाला योग नहीं। अगर आपने आधा निद्रा योग किया और आधा योग किया तो वो पावर नहीं होगी उसके अंदर। पावरफुल योग करके फिर जिस आत्मा के प्रति हमें जो सहयोग देना है वो मनसा सहयोग दें, या जो प्रेरणा देनी है, आह्वान करना है, जो भी आत्माओं के प्रति कई बार हमारे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान भी हम उस समय कर सकते हैं। फिर बाबा हमें कहता है ये अंतिम समय की सेवा है, और इस समय में बना ये जैसे कि वायरलेस सेट है, बाबा कहता है, तो अंत समय में हम वाणी के द्वारा सेवा नहीं कर सकेंगे या साधनों के द्वारा सेवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परिस्थितियां ही इतनी विकराल होंगी कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, यहां तक कि सेंटर तक भी नहीं आ सकेंगे। पर उसके लिए ये जो हमारा वायरलेस सेट है वो तब काम करेगा जब हम वॉइसलेस होंगे, यानी संपूर्ण निर्विकारी मन की स्थिति होगी, तब बाबा की टचिंग्स हमें सीधी होंगी। और जो भी संकल्प हम किसी आत्मा के प्रति करेंगे वो हम संकल्प से ही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, संकल्प से ही संदेश हम दे पाएंगे। कई बार कई ब्राह्मण महसूस भी करते हैं कि अभी अभी इस आत्मा के प्रति आज ये संकल्प किया कि आ जाए तो ये काम हो जाए, और देखो वो आ गया और ये काम भी हुआ। तो कैसे हुआ? अगर लाइन क्लियर है हमारी मन की, सीधा वो संदेश उस तक पहुंचता है और वो आत्मा हमारे सामने। मधुबन में बहुत अनुभव करते हैं लोग ये, मधुबन में आने के बाद तो ऐसे संकल्पों की सिद्धि, ये सोचा और बस बाबा ने, फिर हम कहते हैं देखो बाबा ने बिल्कुल आपको अपने सामने ला दिया, हम आपके बारे में सोच रहे थे आप मिल गए। या कोई बड़े भाई बहन के बारे में भी आप सोच रहे होते हैं कैसे वो आपके सामने आ जाते हैं, हालांकि आपको लगता है कि इनसे मिलना बहुत मुश्किल है, पर देखने में आता है वो सामने ही आ जाते हैं। तो कैसे आ गए? वो पावरफुल शुद्ध संकल्प होता है, वो उस तरह से काम करता है, तब हमारा वो वायरलेस सेट काम करता है। और बाबा कहता है इस सेवा में हमें चांस की भी बात नहीं है कि चांस मिलेगा तब हम करेंगे। और सेवाओं में तो चांस की बात होती है, और सेवाओं में विघ्न भी आते हैं, उसमें तेरा मेरा भी आ जाता है कि इसको चांस मिला मेरे को नहीं मिला, ऐसा भी हो जाता है। थोड़ा नामान शान की बातें भी आ जाती हैं और दूसरी सेवाओं में इस तरह के विघ्न चलते हैं, लेकिन मनसा सेवा में अपनी ही मनसा पर सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है, कभी भी कर सकते हैं। और कोई सेवा का चांस ना मिले तो मनसा सेवा करो, उस सेवा से भी ज्यादा मार्क्स मनसा सेवा के हैं, उस सेवा से भी ज्यादा पावरफुल सेवा मनसा सेवा है। बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, पर मन ठीक होना चाहिए। अगर तन की बीमारी में मन भी बीमार हो गया तो फिर नहीं कर पाएंगे मनसा सेवा। लेकिन अगर मन आपका बिल्कुल एकरस स्थिति में है, वही शांति की स्थिति में है, आनंद की स्थिति में है, बाबा की याद में है, तो हम बिस्तर पर लेटे हुए भी मनसा सेवा कर सकते हैं। बूढ़े हो गए हैं, कई बार सोचते हैं घुटने नहीं चलते, अब कमर दर्द होती है, अब कहाँ तन से सेवा कर सकते हैं बाबा के घर में, अब तो दूसरों से ही हमें सेवा लेनी पड़ती है, लेकिन मनसा सेवा तो कभी भी कर सकते हैं। और मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि इस सेवा का अभ्यास पढ़ाते जाओ। वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, आसपास के वायुमंडल, आपके वायुमंडल में कोई भी आए वो शांति का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। वो तब होगा जब हम खुद शांत होंगे। अगर मेरा ही मन अशांत है तो हम कैसे शांति का वायुमंडल बना सकते हैं? अगर मेरा ही मन अभी भी दुखी हो जाता है किन्हीं बातों को लेकर के, तो कैसे हम सुख का वायुमंडल बना सकते हैं? फिर मेरी वृत्ति से दूसरी आत्माओं की वृत्ति सहज परिवर्तन हो जाए, ये अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। तो जितना हम ये सेवा का अभ्यास, हालांकि लगती सबसे सहज है ये सेवा, लेकिन है सबसे कठिन। और सेवाओं के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मनसा सेवा के लिए थोड़ा मन पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अटेंशन देकर के वो हमें अभ्यास बढ़ाते जाना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सविता दीदी जी का, कि कैसे हमें अपने मन को ठीक रखते हुए मनसा सेवा करनी है। उसके लिए उन्होंने तीन बातें बताई कि मन की एकाग्रता चाहिए हमारी, दूसरा एकांत का अनुभव करना है, और तीसरा अंतर्मुखता का। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लास्ट यही सेवा हम सबको करनी है, और सबसे पावरफुल सेवा है। अभी भी हम योग में बैठेंगे और मनसा सकाश देंगे सभी को। ओम।